एक और दंत परम शुद्ध स्वामी जी श्रीमंत गति महाराज द्वारा दिन 7 बराबर चैनल को प्रातः 5-8 बजे सचित पानी हुआ रहा।
राम 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 परा कृष्ण परम ब्रह्मया कृषि सौंदर्य सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय कौसले श्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीताय गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसिकानुगुणवर्धनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वयं श्रीभूषितकरान् नवनीतभवत् पीताम्बराधरिन्दहराधिरोषात् सुंदर मुखारविंद कृष्णाचरम कि जाने हरि ओम नमो परमात्मे नम श्री गोविंदाय नमो नम श्री
नारायण 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 नारायण। विचार करने से एक बात कई तरह की है तो ये सब भोगों में है। तो भोगों में शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषय है। शब्द सुनना चाहते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनना चाहते हैं, अच्छा कई तरह की कथा खेल तमाशा आदि देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। वो सुनने में शब्द चाहते हैं, वो शब्द 2 तरह का होता है, एक वर्णात्मक होता है, एक ध्वन्यात्मक होता है। बोलते हैं चलते हैं ये वर्णात्मक अक्षरों का है, ऐसे ये ध्वन्यात्मक है। ध्वन्यात्मक 3.5 बाजे होते हैं, एक खाल का होता है, एक फूंक का होता है और ये क्या होता है, तार का। ये आपने बता दी बात। और 3.5 होता है करताल का, ये 3.5 बजे है। अब इनमें एक एक में कई तरह का तार के बजे कई तरह सा तार है, सारंग कमूरे कई है, खाल के बजे में ताल है, पखावज है, ढोलक है, ढोल है, कई है, फूंक में कई तरह बांस भी है, मशक का वजह है, ये कही है, फूंक का वजह सभी पेटी है ऐसा। और करताल है, वो करताल भी है, हाथ से बजाओ चाहे लकड़ी से बजाओ चाहे घुंघरू लगा कर बजाओ, करताल की तरह हो। ये शब्द होता है। तो शब्द ध्वन्यात्मक वर्णात्मक, वर्णात्मक में 9 व्याकरण है, व्याकरण बता दी। 12 वर्ष नहीं पढ़े तो व्याकरण का अंतर आता है। व्याकरण शब्दात्मक है, उस शब्द में फिर कई तरह के भेद है, क्योंकि कान से शब्द सुनाई देता है ना, तो कान में 2 शक्ति है, दूसरी इंद्रियम 1-1 शक्ति है, जबान में 2 है, एक ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय 2 जबान में भी है, पर जबान की शक्ति 1 ही, कर्मेंद्रिय 1 है, ज्ञानेंद्रिय 1 है, और आंख में देखने की शक्ति है, नाक में सूंघने की शक्ति है, त्वचा में स्पर्श करने की शक्ति है, रूप की और एक गंध की, एक गंध सुगंध की, एक भोजन रस की, रस चाखने की। तो ऐसे ये भोग है सभी। कान में 2 चीज है, एक कान से सुनते हैं शब्द की है, और एक शब्द के द्वारा ज्ञान होता है, उसकी 2 शक्तियां कान में। मानो सुनते हैं वो तो शब्दों से सुनते हैं, और एक सुन करके स्वर्ग है, नरक है, ऐसे इंग्लैंड है, ऐसे वो नेत्रों का विषय भी होता है, पर पहले कान का विषय होता है। तो कान का विषय बहुत लंबा चौड़ा है, ऐसे 5 ज्ञानेंद्रियों का है, आदर का, मान का, सत्कार का, ये विषय एक कीर्ति का, 2 चीज ये है। आदर सत्कार शरीर का होता है, नाम गरी अपने नाम की होती है। ये सब भोग है, ये सुख भोग के अंतर्गत आ गया। एक सुख भोग है, उसके अंतर्गत ये सब आ गए। तो सुख भोग की इच्छा होती है, एक संग्रह की धन की इच्छा होती है। तो धन दो तरह का होता है, एक स्थावर है, एक जंगम है। रुपया पैसा, हीरा पन्ना, चांदी, सोना, माणिक, मोती आदि, ये स्थावर जंगम, स्थावर है धन। एक गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि, ये धन जंगम धावर धन है, ये धन कहलाता है, यह धन। तो एक इसकी इच्छा होती है, एक भोग की, एक धन की। ये दो इच्छा मुख्य मनुष्यों में रहती है, और अच्छे आदमी है उनके धर्म की अनुष्ठा इच्छा होती है कि धर्म का धर्म करें, दान करें, पुण्य करें, व्रत करें, उपवास करें, तीर्थ करें, ऐसे धर्म की एक इच्छा होती है। एक होती है जीव के कल्याण की, जो मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, भगवत दर्शन हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्ति हो जाए, भगवान से प्रेम हो जाए, भक्त हो जाए। ये चार तरह की इच्छा। अब चार तरह की इच्छा है, इनसे बाहर कोई नहीं है, वो तो फिर आप लिख लेना, फिर पूछ लेना। तो चार तरह की है। अब चार तरह की तो हमारे चाहना है, हमारे पास उपाय कितने हैं इन चीजों के प्राप्त करने के उपाय, कि धन भी प्राप्त कर ले, भू भी प्राप्त कर ले, धर्म का अनुष्ठान भी कर ले, कल्याण भी कर ले, इसका उपाय क्या है। उपाय पास हमारे दो है, एक तो है प्रारब्ध, एक है पुरुषार्थ। एक तो प्रारब्ध से मिलता है, एक उद्योग कर्म से मिलता है। तो दो हमारे पास जरिया है, तीसरा जरिया नहीं है। शब्दों के भीतर अनेक तरह की बातें हैं, पुरुषार्थ के भीतर अनेक तरह की बातें हैं, परंतु मुख्य बात दो ही है। इसको तकदीर और तदबीर भी कहते हैं। तकदीर मानो प्रारब्ध, जैसे पुरु के जन्म के जो पुण्य पाप है उनको मिलता है, वो तकदीर होता है। तदबीर जो उद्योग क्रिया की जाती है, क्रिया से एक पाप मिलती है, एक ये है। अब इसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो अब चार तो है चार, उपाय है दो, तो क्या करे, भाग लगा दो अपने, दो दो चीज हो जाएगी। दो है तकदीर की भागी की बात, और दो है पुरुषार्थ की बात। तो भागी पुरुषार्थ की बात क्या है, कि पुरुषार्थ की बात धर्म का अनुष्ठान है, पुरुषार्थ है धर्म के अनुष्ठान में, और कल्याण में उद्योग है, पुरुषार्थ है ये। और धन की प्राप्ति में और भोगों की प्राप्ति में प्रारब्ध की मुख्यता है, और धर्म के अनुष्ठान में कल्याण में अभी किए हुए उद्योग की मुख्यता है। इसमें प्रारब्ध नहीं है इतना, प्रारब्ध का संचित का थोड़ा घात होता है, संचित गौण होता है, और पुरुषार्थ मुख्य होता है। और प्रारब्ध में जो धन मिलना है, जो मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो प्रारब्ध की मुख्यता है। उसमें क्रिया चलेगी नहीं, क्रिया करते हैं दोनों पे, चार 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 आठ हो जाएगी। क्या आठ क्या हो जाएगा, एक धन धनवत्ता, एक निर्धनता, उल्टा निर्धनता, एक सुख भोग, एक दुख भोग, एक धर्म का अनुष्ठान, एक पाप का करना, एक बंधन, एक मुक्ति, आठ हो गए। ये इतनी इच्छा हमारी होती है। तो ये दूसरी बात करी, इच्छा नहीं होती, ना कोई दुख पाने की इच्छा होती है, ना निर्धनता की इच्छा होती है, ना पाप करने की, ना गाड़ी बंधन की। परंतु भ्रमण पड़ने के कारण से इच्छा दुख की नहीं होती है, परंतु दुख का काम करते हैं। पुण्य फल में छंति, पुण्य में छंति मानवा, पुण्य का फल जो सुख होता है, उस सुख को तो चाहते हैं, मैं पुण्य को नहीं चाहते हैं, पाप करते हैं। तो भाई करोगे जैसे फल तो मिलेगा ही, तो पुण्य नहीं करके पाप करते हैं, इस बात दुख पाते, ये पाना ही पड़ेगा, अनिवार्य है, इसको कोई हटा नहीं सकता। तो पुण्य से फल में छंति, पुण्य का फल तो चाहते हैं, पुण्य में छंति ना, पुण्य नहीं करना चाहिए, धर्म करना नहीं चाहते, न पाप फल में छंति, पाप का फल तो नहीं चाहते, पर पापन कुरुवंती यतनता, झूठ, कपट, जालसाजी, बेईमानी, धोखेबाजी, विश्वासघात, ठगाई आदि ये करते हैं, प्रयत्न पूर्व करते हैं, छिप छिप करते हैं, एकांत में करते हैं, किसी को पता नहीं लगा ऐसा करते हैं बड़े जोरदार, तो दुख भी ऐसा अचानक मिलता है। अनचित आप बिना चिंते विचार विचार किए आप साफ आकर मिलेगा ही, दुख मिलेगा ही, और बंधन में पड़े ही है, मुक्ति नहीं कर तो बंधन तो सोचते है ही, प्रकृति का बंधन है। ये चार है। अब इसमें शंका है, विचार करना है कि हम जो काम करते हैं उसमें कर्म की प्रधान है कि भाग्य की प्रधानता है, ये शंका बहुतों के रहती है मन में, प्रधानता किसकी है। तो प्रधानता भाग्य की है, प्रधानता पुरुषार्थ दोनों की है। इसमें प्रधानता जीव का कल्याण करना, धर्मानुष्ठान करना, इसमें तो पुरुषार्थ की प्रधानता है, और धन की प्राप्ति होने भोग प्राप्ति इनमें प्रारंभ की मुख्यता है। कि मैं करो कितना ही परंतु होगा वैसे ही। एक ही बाजार में आदमी खरीद करता है, बिक्री करता है, बिक्री करता है उसके मन में तो है कि मैं नफा है, और खरीदी करता वो खरीदने में नफा है, अब दोनों में नफा कैसे होगा, वो नफा तो एक में होगा चाहे खरीदी में हो चाहे बिक्री में हो, परंतु जस्ती है भीतर में, तो जस्ती है उसमें प्रारंभ मुख्य है, प्रारंभ के कारण से खादा खरीदता है नफा हो जाता है, और प्रारंभ के कारण नुकसान हो जाता है। चतुराई में कम नहीं है, बुद्धिमानी कमी नहीं है, विचार करने में कमी नहीं है, तार समाचार में कमी नहीं लगता है, सब करते हुए भी ऐसा उसे घाटा देना पड़ता है, क्योंकि प्रारब्ध का मुख्य प्रारब्ध का है, अभी पुरुषार्थ की मुख्यता नहीं है, परंतु लोगों ने पुरुषार्थ की मुख्यता मान रखी है कि बस कर्तव्य कर्म करना चाहिए। उसमें कहा है भाई काय मन कर एक आधारा और दैव दैव आलसी पुकारा, दैव करना प्रारब्ध हो तो आलसी काम कर्म करना चाहिए, तो कर्म की मुख्यता मानते हैं। होने वाले जो होनहार है वो होनहार कर्मों पर नहीं है, वो प्रारब्ध पर है। इसका अर्थ पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए ये कभी नहीं हुआ है, पुरुषार्थ तो पूरा करना चाहिए, तो कोई प्रारब्ध से होगा कोई पुरुषार्थ क्यों करे, तो पुरुषार्थ नहीं करोगे तो अगर ही प्रारब्ध खराब बनेगा, जब काम नहीं करोगे अच्छा तो अगर ही दुख है दुख का प्रारब्ध बनेगा, इस बात से पुरुषार्थ करना चाहिए। और आलसी हो जाओगे, प्रमादी हो जाओगे, जीवन आपका निरर्थक हो जाएगा। आज यही बात हो रही है, पाप के साथ धर्म संबंध मानते हैं, और पाप के साथ साथ झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी अधर्म कार्य को मुख्य मानते हैं, दोनों ही बड़े भारी घाटे की बात है, परंतु कोई समझता नहीं, जानता नहीं, समझते नहीं, ये दोष नहीं है, समझना चाहते नहीं। हमारे तो मुश्किल इसमें ही होती है ज्यादा, समझना चाहे तो ठीक आ जाए, पर समझना ही नहीं चाहते, अपने ही समझते हैं, हम समझते हैं वो ठीक है, दूसरे समझते ही नहीं। एक ऐसी बात कहावत है कि शेर भर अकल मिली जिसमें 15 में मेरे पास है, एक आने में दुनिया को सलताया समझो, एक आना अकल में 15 में अकेले में है, ऐसा अकल का अभिमान है, तो अकल का अधूरा और गांठ का पूरा मिलता नहीं, मैं समझ मेरे में कम है ऐसा आदमी नहीं मिलता, भीतर से भी मैं कम समझता हूँ ऐसा नहीं मिलता, और धन मेरे पास बहुत है गांठ का पूरा नहीं मिलता, गांठ का तो अधूरी 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 अधूरी, 10, 20, 50, 60 हो या 1000 तो लाख मांगेगी, कोटि अरब खरब बने तृष्णा अधिक आग लगेगी, स्वर्ग पता लोग राज मेरे तू ही तृष्णा आदि की यदि आदि सुंदर एक संतोष बिना सठ तेरी तो भूख कबू न भगेगी, वो कमी कमी रहेगी, पूर्ति किसी होते ही नहीं, तो अकल का अधूरा गांठ का पूरा मिलना मुश्किल है। आदमी विचारवान है वे अकल के भी अधूरे मानते हैं, भी हमारे में समझ कम है और उसमें भी कम मानते हैं, धन है इसमें पूरा मानते हैं, अपने तो भगवान ने दिया उतने बहुत है, संतोष अनुत्तम सुखलाभ संतोष तुल्यम निधिस्तिनानत, जितना मिला उसमें संतोष करना चाहिए, तो संतोष किस में करना चाहिए, तीन में संतोष करना चाहिए, स्वधारे भोजने धने, अपने स्त्री पुत्र परिवार मिल गया उसमें, और भोजन जैसा भक्त मिल जाए उसमें, और घन पुरुषार्थ कर्म जो मिल जाए उसमें, तीन में संतोष करना चाहिए। संतोष नहीं मगर तीन में संतोष नहीं करना चाहिए। दान करने में संतोष नहीं करना चाहिए, जप करने में संतोष नहीं करना चाहिए, शास्त्रों के पढ़ने में सत्संग में संतोष नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पुरुषार्थ मुख्य करने से होगा, संतोष नहीं होगा ये। और धन संपत्ति वैभव परिवार और भोजन, ये पुरुषार्थ नहीं होगा, तो इसमें क्यों इसमें संतोष करो, जो मिल गया भगवान ने दे दिया ठीक है। संतोष का अर्थ ये नहीं कि काम न करना, उल्टा मत समझ रहे ना, संतोष का अर्थ प्राप्त हुआ उसमें तृप्त रहना और उद्योग करना, पर उद्योग करने में धन के लिए उद्योग करता है एक तो, और एक कर्तव्य का पालन करता है, तो धन के लिए करने से धन अधिक हो जाएगा ये कारण नहीं है, किंतु आज सिर्फ प्रमादी होगा तो दुख पाना पड़ेगा, वृक्ष आदि की जोनी होगी, लोक प्रलोक दोनों बिगड़ जाएगी। इस वास्ते उस पुरुषार्थ करना, उद्योग करना, तो उद्योग करने से आलस्य और प्रमाद नहीं है, प्रमाद आलस्य निद्रा भी तमोगुण तामसी वृत्ति है, करना रजोगुण वृत्ति है, पर रजोगुण वृत्ति है ये रजोगुण वृत्ति मानी है पतंजलि योग दर्शन में, जो योग दर्शन एक शास्त्र है उसमें रजोगुण को क्रियात्मक माना है, पर गीता क्रियात्मक नहीं मानती है, मानती भी है क्रियात्मक पर मुख्य रागात्मक मानती है, जो रागात्मक वृत्ति राग रूपी रोग है, क्रिया से आप बनता नहीं है और क्रिया से नहीं बनता है, राग से बनता है, युद्ध का मौका था ना, इस वास्ते क्रिया मात्र रजोगुण नहीं है। कर्म को सात्विक राजस तामस तीन विभाग बताया गीता ने, सात्विक कर्म होता है, राजस कर्म होता है, तामस कर्म होता है, और क्रिया को रजोगुण मानती भी है गीता, गुण गौण है, प्रकाश संचय प्रवृत्ति संचय मोह मेह पांडव न दृष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति, तो इसमें ये बात लिखी है भी प्रकाश प्रवृत्ति मोह ये तीनों गुण है, प्रकाश सतोगुण का है, प्रवृत्ति रजोगुण की है, मोह तमोगुण का है, तो क्रियात्मक रजोगुण भी मानना है गीता ने, पर बंधन कारक क्रियात्मक रजोगुण इतना नहीं है, निषिद्ध कर्म करे तो वो बांधता है, क्रिया मात्र नहीं है, राग बांधने वाला ही है, तो दोषी रजोगुण राग है, क्रिया इतना दोषी नहीं है, वो तो कर्म दोषी करोगे तो दोषी बन जाओगे, नहीं तो कर्म शुभ करोगे निष्काम भाव से करोगे तो मुक्ति हो जाएगी, और भगवत संबंधी करोगे तो कल्याण हो जाएगा, नाम से करो कीर्तन करो पद गाओ ये क्रिया है, क्रिया होती होगी सत्वमुख होकर गाड़ी कल्याण करने वाली हो जाएगी, इस वास्ते क्रिया मात्र रजोगुण है ऐसा गीता नहीं कहती, ये अवस्था है। अब कहते हैं इसको बलाबल कौन है, बलवान प्रारब्ध है कि बलवान पुरुषार्थ है, कहते इसमें उत्तर हो गया, मैंने कहा इसमें उत्तर हो गया, बलवान क्या है, इनका क्षेत्र अलग अलग है, बलाबल का विचार तब होता है जब एक जगह आकर के युद्ध करे दोनों, तो बलाबल का विचार होता है भाई बलवान कौन है निर्बल कौन है, अरे भाई कर्म का तो सब क्षेत्र है, धर्म का अनुष्ठान कल्याण करना, और प्राप्ति का क्षेत्र है धन की प्राप्ति भोग की प्राप्ति, तो दोनों क्षेत्र अलग अलग है, पुरुषार्थ अलग है प्राप्ति अलग है, लड़ाई होती नहीं, बलाबल विचार तो एक जगह दोनों आ जाए तब बलाबल का विचार करता है, तुल्य बल विरोध होता है, तुल्य बल होना चाहिए, अन्य लब्धावकाश प्रवेश विरोध लड़ाई होती नहीं, क्षेत्र ही अलग है। अब कर्म बड़ा है कि युक्ति बड़ी है, किसे युक्ति है, कर्म के बिना युक्ति काम की नहीं है, युक्ति कर्म का साथ देने वाली है, वो कर्म के साथ साथ वेद काम के साथ युक्ति है वह तो ठीक, और दूसरी युक्तियां से जो नास्तिकता आ जाए वो युक्ति खराब है, बहुत पतन करने वाली है, इस वास्ते ये ब्रह्म दर्शन में जो वेदांत दर्शन है उसमें लिखा तर्क नाम अप्रतिष्ठानात्, केवल युक्तियों की प्रतिष्ठा नहीं है, इज्जत नहीं है, धर्म के सही तो इज्जत है, और पाप के साथ मिल जाए तो फड़ी फजीती है उसकी, तर्कता माँ कुतर्कता, तर्क करो और कुतर्क मत करो, युक्ति लाओ पर विरुद्ध युक्ति मत लाओ। तो युक्ति की खास कोई महिमा नहीं है, महिमा कर्म की और प्राण की है। तो तुर्की युक्ति उसमें साथ चलती ठीक रहती है। आज की जनता प्रमाण को नहीं मानते, गीता में लिखा है, भागवत में लिखा है, उपनिषदों में लिखा है, जो नहीं मानते युक्ति बात हो तो चुप हो जाए आदमी। शास्त्र में क्या कहा है, तस्मा शास्त्र प्रमाणन्ते कार्या कार्य वेशो, कर्तव्य और अकर्तव्य में शास्त्र ही प्रमाण है। गीता कहती है ज्ञात्वा शास्त्र विधान हो कर्म, कर्म को संहारोषी, शास्त्र की विधान है समझ करके कर्म करना चाहिए तुम्हारे को, शास्त्र कहे वो करना चाहिए, निषेध करे वो नहीं करना चाहिए। शास्त्र मुख्य रखा इसमें, शास्त्र है उस श्रेष्ठ पुरुष है जो कि अपने स्वार्थ की स्वार्थ का त्याग करके दूसरों के हित के लिए काम करते हैं, वे श्रेष्ठ पुरुष है। श्रेष्ठ पुरुषों के वचन प्रमाण मानना चाहिए और शास्त्र में श्रेष्ठ पुरुषों के ही वचन है। श्रेष्ठ पुरुषों में भगवान और भगवान के भक्त दो हैं, हेतु रहित जगत उपकारी तुम तुम्हारे सेवक सुधारी, एक भगवान और एक भगवान के सेवक, ये बिना स्वार्थ करने वाले हैं। तो इनकी बात माननी चाहिए। जो स्वार्थ में सकल माही सुपने ऊपर परमार्थ नाही, जो दूसरे लोग स्वार्थ में लगे हुए हैं परमार्थ नहीं लगे, उनके वचन इतने प्रमाणिक नहीं होते कि स्वार्थ होता है बीच में लेना है तो उसके प्रमाण नहीं होते। वचन प्रमाणिक होते हैं कितने किसके जिसमें ना स्वार्थ है, चार दोष है ना, वाणी के चार दोष है जिसमें भ्रम प्रमाद विस्तार करना पाठो, चार दोष है वाणी में। दोष रहित वाणी होती है वो मान्य होती है, दोष सहित वाणी नहीं होती। वाणी क्या कहने वाला जो किसी विषय का प्रतिपादन करता है, व्याख्यान सुनाता है, दूसरों को समझाता है, तो सबसे पहले आप खुद निस्संदेह होना चाहिए। खुद के संदेह रहेगा तो वो ठीक विवेचन नहीं कर सकेगा। साफ बिल्कुल जैसे दोपहर के समय तमसस्तंड भास्कर खूब प्रकाश दो चंद्रमा सूर्य उनमें जैसे दिखता है, ऐसे जिस विषय का वो प्रतिपादन करे दूसरों को समझावे तो खुद के भ्रम नहीं हो, निस्संदेह हो, तो ये दोष संदेह होगा तो अच्छी बात नहीं कह सकेगा, ठीक तरह से कहने में मुश्किल हो जाएगी। एक प्रमाद है कहने में, प्रमाद करता है कह दिया सुना दिया सुनते नहीं सही, यूं ही सही हुई, वो प्रमाद होता है। प्रमाद वो अनवधारणता असावधानी कहते हैं, उसके वचन का प्रमाण असर नहीं पड़ता लोगों पर और उसके कहने से करना चाहिए भी नहीं, भ्रम है प्रमाद है। एक लिप्सा है रहने की इच्छा है, तो लेने की इच्छा मन में रहती है, वो कहता है उसका वचन इतना दामी नहीं होता, वो युक्ति बढ़िया भी कह देगा, शास्त्र की बात कह देगा सब कुछ, परंतु वो मान्य नहीं होता। कारण की लिप्सा है, लेने की इच्छा है भीतर में, तो लेने की इच्छा है, स्वार्थ की जहाँ भावना होती है उनके वचन इतने प्रमाणित नहीं होते, वो मान्य नहीं होते, सब प्रमाण नहीं होते। और ये करना पाते हो एक समझाने में शक्ति, जैसे कोई हिंदी जानता है अब अंग्रेजी सुनावे तो क्या समझेगा, अंग्रेजी समझेगा, अंग्रेजी समझता है हिंदी बैठे हुए जानते नहीं अंग्रेजी, अंग्रेजी क्या समझेगा। तो करना पाठ है, बोलने की शक्ति ठीक नहीं है, युक्ति ठीक नहीं है, शास्त्र का प्रमाण अपने ठीक तरह से कहना नहीं आता, ठीक तरह से समझना नहीं आता, कारण वो है हर एक काम करने के जो साधन है उनमें पटुता नहीं है, तो वो करना पाटो दोष होता है। इन दोषों से कही हुई बात है जिसका प्रमाण नहीं होता, तो ये बात है सर। तो प्रारब्ध और पुरुषार्थ और युक्ति, इनकी बात संक्षेप से मैंने कही। गीता में देखना चाहे तो 18वें अध्याय का 12वां श्लोक है, अनिष्टम इष्टम मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रीत्यं संन्यासिनां कोचित। तो कोई जानना चाहे तो 18वें अध्याय का 12वां श्लोक है, इसकी व्याख्या पढ़े, बहुत बातें खुल जाएगी। प्राप्त की, पुरुषार्थ की, युक्ति की, कैसे बात है, कौन प्रमाण है, क्या मानना, क्या मन नहीं मानना चाहिए, क्या जानना है, क्या नहीं जानना चाहिए, सब बातें उसमें खुल जाएगी। अब एक बात बताएं कि प्राप्त की प्रधानता है कि कर्म की प्रधानता है। अभी वर्तमान में कर्म करते हैं ये ठीक है अथवा प्राप्त ठीक है, तो इनके दोनों का एक जगह नहीं है, दोनों जगह। इनमें एक बात बताऊं, एक कहानी सुना आपको। एक कोई अच्छे वैद्य थे, उसके पास रोगी आया। वो रोगी आया कि महाराज हमारे पेट की भी बड़ी पीड़ा हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, तो पेट में दुखता है, दर्द हो रहा है, क्या करूं, कैसे करूं, और आंख भी खराब हो रही है, दुखती भी है और खटकती भी है और ठीक से दिखता नहीं है, आंख की बीमारी है। उसको लेटाया, पेट देखा, दबाया, बजाया, सब कुछ देखा, पेट ठीक है, इस बात है, आंख को भी देखा, ठीक से संभाला। इतने मुझे एक और आ गया, उसने कहा महाराज मेरा पेट में बहुत पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, कोई दवाई दे, और आंख में पीड़ा हो रही है। क्या हवा चली, एक ही बीमारी फैल गई, पेट की बीमारी, आंख की बीमारी, एक ही जैसा मर्जी, यही बात है। तो उसको भी देखा, देख कर कह दिया कि तुम जाओ, ये पुड़िया है, वो लिख दिया उनको, ये आंख की बीमारी की पुड़िया दे दो और ये इनको पेट की दे दो, दोनों पुड़िया दे दी, दोनों पुड़िया जाकर वहां से ले दो, वहां से मिलती है, देख दिया। वहां जाकर उसने कहा कि हमारे ले दवाई, उसने पुड़िया बांध कर दवाई दे, एक में आंख की पुड़िया बांध दी, एक में पेट के लिए दर्द दूर करने की सूर बांध दिया। सूर बांध कर कह दिया कि देखो ये सूर ने पानी में डाल देना, उसको ओटाना, तो अच्छेर का दो छटाक रह जाए, तब काढ़ा छान करके ठीक है सो पी लेना पेट में, और ये आंख में है जो सोते समय आंख में आंच करके और थोड़ी देर ऐसे ऐसे आंख को करना जिससे पानी चपक जाए, किसी सो जाना, फिर देखना करना नहीं, सो जाना चुपचाप, तो ठीक हो जाएगी। दोनों को विधि बता दी, दोनों ने सुन गई, दोनों ले गए। तो विधि तो जैसे बताई वैसे ही की मैं पुड़िया बदल दी, जो आंख में डाल देनी पुड़िया वो डाल दी पानी में, ओटा कर पी गया वो तो, और जो पुड़िया आंख में वो चूर्ण था जो कूट किया हुआ काटेगा वो थोड़ा सा डाल दिया आंख में, तो आंख में पहले पीड़ा फिर कसरा डाल देते पीड़ा ज्यादा बढ़ गई। और आंख की ठंडी दवाई होती है जिनमें आंख शीतल हो जाए वो पी गया, पेट में, पेट में भाई को नहीं ज्यादा आगे दर्द था, बेल भाई हो गई, भाई हो गई तो पेट का दर्द ही बढ़ गया, आंख का दर्द ही बढ़ गया। अब वो पड़ा पड़ा गाली देता है वैद्य को कि तेरा बाप तो मौत से मरा, मैंने मारा नहीं, तेने किस दिन का बदला लिया, मेरी पीड़ बढ़ा दी, अरे कह रहे मैं दवाई नहीं दूं तो कोई बात नहीं है, परंतु दोनों पीड़ बढ़ाई क्यों, पेट की पीड़ी बढ़ा दी, आंख की पीड़ी बढ़ा दी, रात्रि भर गाड़ी देता रहा, सुबह जल्दी पहुंचा, दवाखाना खुला ही नहीं, पहले ही पहुंच गया वो बैठ जाए, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, मेरे को पूछे क्या हुआ, तुमने किया सो हुआ, क्या हुआ, मेरे पेट की पीड़ा ही बढ़ गई, आंख की पीड़ा ही बढ़ गई, बंद पीड़ा बढ़ गई हमारी, तूने किया वो हुआ। वैद्य पढ़ने की बढ़ने की बात तो नहीं है, किसी की दवाई जल्दी हुक्म उठाती है, किसी की देरी से, किसी के थोड़ा लाभ होता है, किसी के ज्यादा, ये तो हो सकता है, पर उल्टी पीड़ा हो जाए ये बात तो है नहीं, दवाई में ऐसी कोई दवा में है ही घूम दवा, ऐसा वो नहीं है कि नहीं है, तुम्हारे घर से नहीं है, मैं तो भूत भोगी हूँ, रात भर दुख पाता रहा, बड़ा कष्ट हुआ मेरे पेट, पेट में भी, आंख में भी बड़ा दर्द हुआ, ऐसा था तो पटकी चूर्ण वाली आप पुड़िया, एक पुड़िया ये थी क्या, दूसरी दूसरी तो पी गया, वो तो पी गया, वो तो क्या बचे उसमें, ये तो थोड़ी देर आंख में हटी नहीं, अब इतना चूर्ण कैसे हटे, आंख में मावी नहीं, इस बात ये बच गई, ये पुड़िया है सब गारे आकर का पहाड़ ऊंचा काम क्यों किया, पेट वाली ले ली, आंख में आंख वाली ले ली, पेट में तो मरा नहीं ये, गरीब समझ अच्छी बात है, प्रारंभ है पीड़ा तो बढ़ेगी, पुड़िया उल्टी करेगी तो पीड़ा बढ़ेगी, इतने दूसरा आ गया कि कैसे है कि मेरे तो फारे गए। देख लीजिए पैसे वाला आदमी, पैसे वाले को आपने बढ़िया दी मेरे को घटिया दी। घटिया बढ़िया नहीं, आम की दवाई एक ही है, एक ही पेट की दवाई नहीं है, पर तू पुड़िया बदल रही है। तुम्हारे कैसे है कि महाराज हमारे ठीक है, आग में तो पीड़ा कम है और पेट हम दिया जो उसी बात में एक दस्त लगी तो पेट भी ठीक है, उसमें भी पीड़ा नहीं है, आंखों में पीड़ा कम है। कभी कोई ये पैसा वाला भी पक्षपात करता है। अरे पक्षपात नहीं है भाई, मेरी पुड़िया तो एक ही है, पर तुमने पुड़िया ही उल्ट लिया, अब क्या किया जाए। ये तो एक कहानी। तात्पर्य क्या है कि हमारे दो बीमारियां हैं, हमारे बीमारी दो इस दुनिया में। एक अंधेरा सबकी आंख में जो छाया, जिसके कारण सूझ पड़े नहीं कौन हूँ मैं कहाँ से आया, ऐसी आंख की बीमारी है तो सूझता नहीं, आंख बड़ी बीमारी हो गई। कौन हूँ मैं कहाँ से आया, कौन दिशा को जाना मुझको, किसको देख मैं ललचाया, कौन मालिक है इस दुनिया का, किसने रची है यह माया। दिखता नहीं, आपकी बीमारी तो आपके वास्ते कोई दवाई मिल जाए। एक पेट की, इस दुनिया में एक कूप है जिसके पार कोई नहीं पावे, जिसके भरने कारण प्राणी देश दिगंतर हो जावे। दिन भरे पर घर में जाकर सेवा कर कर मर जावे, पर दिन में कमावे नौकरी करे दूसरा से तीर से पेट के लिए। महाराज पेट का उम्र है क्या, दो चार दुकान करते हैं, बीमारी कई तरह की उम्र करते, खेती करते हैं, कहा वाणिज्य व्यापार करते हैं, व्यापार जूठ कबर करते हैं, पर क्या करें, पेट नहीं भरता है। वो पेट गरीब का भी नहीं भरता, धनी का भी नहीं भरता, लखपति का नहीं भरता, करोड़पति का पेट नहीं भरता। पेट इतना बढ़ गया तो पेट की पीड़ा भी बढ़ गई, आखिरी पीड़ा भी बढ़ गई। झूठ कपट जासादी बेईमानी महा ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप जैसा गर्भ गिराना, ऑपरेशन कराना, नसबंदी करना, महान महान पाप करने में जा लग गए। अब इनसे क्या हुआ, इसे आंख की पीड़ा बढ़ गई। अब दिखता नहीं पुण्य क्या होता है, पाप क्या होता है, विधि क्या है, निषेध क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसे बंधन होता है, कैसे मुक्ति होती है। आंख की पीड़ा अंधेरा इतना बढ़ गया। पहले ही लोग झूठा दिखता, कोई झूठा पुंजा बना देता तो लोग कहते थे झूठ, राम 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 राम, धोड़े पर काला, धोड़े पर काला, धोड़े पर काले अर्थ क्या है, धोड़ी होती है गाय, काली होती है छुरी, तो झूठ लिखना गऊ के गए छुरी मारे जितना पाप समझते थे, आज बही की बही झूठी पुजा झूठा, क्योंकि आंख दिखती नहीं, आंख की बीमारी बढ़ गई, पता नहीं लगा पाप क्या होता है पुण्य क्या होता है, करो पाप खाओ झाप गए, यह बात हो गई। सुनिए, और बोलो कर्म के फूटे कर्म, करो धर्म के फूटे कर्म, धर्म करो फूटे कर्म, पाप करो खाओ झाप, बहुत सर्वानंद। तो दोनों पीड़ा बढ़ गई, पेट की पीड़ा भी बढ़ गई, खर्चा बढ़ गया, काम करने में खर्चा बढ़ गया। कहते हैं आजकल महंगी होगी, महंगी कुछ नहीं हुई है, रुपयों की इज्जत घट गई। रुपया पहले के दम था, ये अपना पहले कर्जदार रुपया है वो 50-60-70 का, 80 का, 90 का रुपया, आज भाव ऐसा है सुना है हमने, पूरा पता नहीं है, 100 तो भी सुना है कि 1 रुपये के 100 रुपये मिलते हैं, तो घट गया बात बात में 1 रुपये में। अब 50-60-70-80 रुपये 1 किलो घी मिले 80 रुपये लगे, तो 1 रुपये का 80 रुपये लगे, तो रुपये ऐसी रुपये से हुआ हिसाब से, रुपये से हुआ कि नहीं, महंगा हो गया, महंगा महंगा गिर से ज्यादा होगी। अब है तो चीज तो उतनी है तो महंगाई होगी, सिक्का घट गया, सिक्का घटने का अर्थ है कि राज्य कमजोर हो गया, राज्य करने वाला कमजोर होगा उसका सिक्का नहीं चलेगा, जोरदार राजा होगा तो उसका सिक्का चलेगा, तो महात्मा सब घाटा पड़ गया, ये दशा हो गई। तो आंख की पीड़ा भी बढ़ गई, कि देखता ही नहीं धर्म क्या होता है, पुण्य क्या होता है, पाप क्या होता है, न्याय क्या होता है, अन्याय क्या होता है। मार्गदर्शबंदी करो, गर्भ गिराओ, करो कितना पाप बताया है। चार महापात्र बताए शास्त्र में, चार महापात्र। एक तो ब्राह्मण को मार देना, ब्रह्म हत्या बड़ा भारी पाप होता है, ब्रह्म हत्या का पाप। ऐसे ही गुरु पत्नी गमन, व्यभिचार मात्र पाप है, पर गुरु पत्नी माँ से भी ज्यादा पूजनीय हुआ है, उसको कुदृष्टि देखना, ये पाप ये है। एक मर्यादा पीना बहुत फैल गई, जिसमें अंग्रेज दवा एलोपैथी में तो मदिरा होता ही है, होम्योपैथी में मदिरे की पुट सकती है, दवाइयों में मदिरा, और कोरा खास मदिरा खुद पीने लग गए। ब्राह्मण बाणिया कह जाए, मेरे रिपोर्टों में काम पड़ा है जिसमें लोगों को महाराज ये तो सब ब्राह्मण बाणिया है, ब्राह्मण बाणिया खाना पीना खराब नहीं है, मांस मदिरा नहीं है। आज महाराज ब्राह्मणों में आ गया, बणियों में आ गया, अब किसका नाम ले बताओ कि भाई ये जाति ऐसी शुद्ध है जिसमें खाना पीना खराब नहीं, मांस है, मछली है, अंडा है, ये चीजें खाने लगे, मदिरा पीने लगे, जान जान करके साफ मदिरा पिए। जो मानस समझ आए तो समझे नहीं, शिकायत आया मेरे पास, मेरा छोरा मदिरा पीता मानता नहीं, पति पीता की मानता नहीं। मैंने कहा ये जो चार महापातक है, मदिरा का पान करना, ब्रह्म हत्या करना, गुरु पत्नी गर्भ का गमन करना, और सोना और जो रतन है इनकी चोरी करना, सुनिए चार महापातक है। महापातक उनके सामने बताया है कि ब्रह्म हत्या या ब्रह्म हत्या के दुगुना पाप है गर्भ कारणी, गर्भपात कर दे यद पापम ब्रह्म हत्या या दुगुना गर्भपात नहीं। पराशर स्मृति में लिखा है कि जो पाप ब्रह्म ब्राह्मण को मारने का है उनसे दुगुना पाप होता है गर्भ गिराने का। अब वो कानून बन गया गिराओ, ऐ शक्तियां बड़ी विशेष हाथ जोड़े इनको, तुम गिरा दे, तुम गिरा दे, कपल गिरा दे, कर दे नसबंदी का ऑपरेशन करा ले, गुस्सा नहीं हो जाए। ऐ प्रसार करती, ब्रह्म हत्या का प्रसार करती है, महान पाप का काम करती है, करवाती है औरों से भी। पीछे पड़ जाए मेरे पास बातें आती है, एक लड़के ने कहा क्या करूं, मेरी स्त्री है जिसके पीछे स्त्रियां पड़ गई कि तू तो बस ऑपरेशन करा ही है। अरे बाबा मैं पालन करूंगा, तुम्हारे तो कुछ कहते ही नहीं, परंतु करा ले। पीछे मेरा पिंड नहीं छोड़ा, फिर डॉक्टर ने कहा कि ये अगर ऑपरेशन करा मर जाएगी, ये जन जाकर पिंड छोड़ा। बीती हुई बात मेरे को लड़के ने सुनाई, ऐसी बात करूं क्या, समाज की स्त्रियां पीछे पड़ जाती है, अगर पुरुष बढ़ जाए नसबंदी करो, ऑपरेशन कराओ, गर्भ रहे तो गर्भ गिराओ। महान हत्या करती है, कारण क्या, आंख दिखता नहीं, इनका परिणाम क्या होगा, कितना पाप है, कितना अशुद्ध है। मैं तो प्रार्थना करता हूँ कि जिस घर में गर्भपात किया हो उस घर की भिक्षा मेरे को मत देना भाई, महान अपवित्र अन्य उसका, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, तुम्हारी तो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट रहेगी, मेरी बुद्धि भ्रष्ट, इतने आदमी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। मैं कहूंगा वैसी बात है, कैसे मुझे लोग सुनेंगे, बहुतों की बुद्धि भ्रष्ट होगी, बड़ा भारी नुकसान हो जाए। इस बात कह देता हूँ सर, कर्म कर्म तुमने नहीं गिराया है तो भिक्षा लेंगे, नहीं तो हम भिक्षा नहीं लेंगे। गर्भ गिराने वाली स्त्री देख ले तो वो अन्न अशुद्ध हो जाता है, वो अन्न खाने लायक नहीं रहता, इतना महान अपवित्र हो जाता है। पर ये बात तो शास्त्र है, लोचन तो सर्वस्व लोचनम शास्त्रम, सबकी आंख क्या है, शास्त्र है, शास्त्र जानकर काम करे वो शास्त्र आंख लुप्त होगी। पाप का पता ही नहीं है कैसा पाप है, क्या पुण्य है, क्या ठीक है, क्या बेठी है। आंख की बीमारी ऐसी हो गई, कौन हूँ मैं, कहाँ से आया, कौन दिशा हो जाने, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, लुप्त होती चली जा रही है। शुद्धि अशुद्धि की परवाह नहीं है, जूते पहले ही खाते हैं, जूते भी चूल्हे पर ठेठ हुआ जूते चले जाते हैं, और खाने के बीच में किसी का छुआ हुआ कैसी चीज हो, किसी चीज को खा लो भाई, रोग के कीटाणु इन दूषण के द्वारा बहुत पैदा होते हैं। चाय पीते हैं उसमें वही पी लो, गौ रक्षी भी वही पिए, वही साथ में चाय पिए, जब क्या करेंगे, चाय पी लिया तो पानी मांगने का दिया बाल्टी में, सब जूठन, सब जो मनुष्यों को जूठन रहे उसमें एक भी जूठन, अब 10-15-20 की एक जूठन आएगी, वो हो गया लोग साफ हो गया, अब पियो सभी। तो बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई, आंख इतनी खराब हो गई, जिसमें देखना बंद हो गया कि क्या पुण्य होता है, क्या पाप होता है, क्या कर्तव्य होता है, क्या अकर्तव्य होता है। शिकायत आती है मेरे पास, में छोरा मानते नहीं, माँ बाप शिकायत करते हमारा छोरा मानते नहीं। तो मैं तो कहता हूँ तू अपना छोरा मानो ही क्यों, इनको मेरा छोरा है, कोई मुसलमान का छोरा आ गया अपने घर में, आ गया बेचारा, इनको अपना छोरा मत मानो। जन्म गया कोई मुसलमान, जन्म गया हिंदुओं में, जन्म गया नहीं मानता कोई, हिंदुओं के कारण नहीं, मुसलमानों के कारण नहीं, कारण क्या है, मानते ही नहीं। कहना कैसे माने, आप अपने बाप को माँ बाप का नहीं मानते तो ये तुम्हारे कैसे माने, तुम अपने माँ बाप को मानते, तेरा दया हुआ भी मानता, पर आप मानते नहीं। ना सास का आदर करते, ना ससुर का करते, ना जेठ का करते, ना जन जिसने का करते, ना बड़ी ननद का करते, आदर नहीं करते, निरादर तिरस्कार करते। कारण क्या, आंख की बीमारी, दिखता नहीं। नतीजा क्या होगा इस बात को जानते, सोचते विचार ही नहीं करते कि ये बड़े भारी पाप की बात है, अन्याय की बात, हम कैसे करें, मैं पाप और पुण्य क्या होता है। तो आंख की बीमारी बढ़ गई, इधर खर्चा बढ़ गया, बेटी की शादी करो तो लाखों रुपया चाहिए, लड़कियां बड़ी माँ बड़ी होगी, 20-25-25-28-28 वर्ष की कन्या होगी, बड़ा भाई पाप बताया है, कन्या स्त्री धर्म में हो जाए तो माँ बाप को बड़ा भारी पाप लगता है। अब कैसे ब्याह बताओ, रुपया चाहिए ज्यादा, रुपया चला, कहाँ से चीजें होगी, महंगी पैदा होगी, कम थी जरूरत बढ़ा दी, ज्यादा मकान ऐसा बनाओ, फर्नीचर ऐसा लगाओ, इसमें इतनी सी तैयारी करो, मार कितना ही नया नया कर दिया। पढ़ाई करने में हम लोग पढ़ते थे, हमें याद है एक तख्ता, उसमें सफेद मिट्टी का पांडाल लिख देता और ईंटें घसकर कर देता और गोसा लेकर लिख लेता। ये मेरी पढ़ाई की हुई है ऐसे, उस पार्टी पर पीढ़ी तो बढ़ जाते, पार्टी बढ़ रही थी। आज इतनी इतनी सामग्री बढ़ गई, जितनी इतनी नई नई पुस्तक आ गई, पहले पुस्तक रद्दी रद्दी दुआ पढ़ो, क्योंकि पैदा कैसे हो पुस्तकों में, तो नई नई बदल बदलने से पैसा पैदा होता है, पैदा की तरफ बात है, अनर्थ कितना होता है, गरीब बालकों की शिक्षा कैसी, अब वेश धारण करो तो एक समान वेश होता हो तो पढ़ाई जाओ, नहीं तो पढ़ाई नहीं पढ़ाएंगे। अब वेश इतना बढ़िया कहाँ से लावे बेचारा गरीब आदमी, घर में रोटी मिलने की तंगी है। तो ये दशा हो गई, क्या हो गया, ये पेट की बीमारी बढ़ गई, भोजन है, कपड़ा है, रहन सहन है, मकान है, मकान की सामग्री है, कुर्सी टेबल आदि है, ये इतना बढ़ा दिया, इतना जो पेट की बीमारी बढ़ गई, आंख की बीमारी बढ़ गई, और इस चाल में चलो तो अंधे तो हो जाओगे, और महाराज रोटी मिलनी मुश्किल हो जाएगी, ऐसा हो गई। धन ऐसी में इतना हो गया, क्या तो धन एक जगह ज्यादा हो गया और कई जगह कमती हो गया, तब वो ऐसा आउटपुट हो गया। वर्षा कटे हुई तो ज्यादा होगी, बाढ़ आ गई, अगर वर्षा हुई अब सूखा पड़ गया। ये होगा कब, कि जब आप धर्म व्यतिक्रम करोगे, पूज्यानंद से व्यतिक्रम, ये आप अपनी मर्यादा को छोड़ोगे तो तीन काम होंगे, अकाल पड़ेगा और मृत्यु महामारी आएगी और भय होगा, घर में बैठे बैठे कांपते, घर में रुपये कमाए हुए हैं, राज की इंक्वायरी आ जाए तो कांपने लग जाए, घर का रुपया कमाया हो अपना रुपया तो हमें डर लगे, पहले डाकुओं से चोरों से डरते तो राज में जाकर शिकायत करते, सागमा डाकू, अब राज डाकू किसी आकर बोले कहाँ, रूम में जाकर के कहें किसको, पुकारे किसको, करे आँख की और पेट की बीमारी इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, इसका कोई पारावार नहीं। क्यों बढ़ गई, कि पुड़िया उल्टी ले गई, भगवान का भजन महाराज, हमारे भगवान का भजन लिखा नहीं है, सत्संग और सत्संग लिखा हुआ नहीं है। अरे लिखा हुआ नहीं है तो करने का होता है, लिखा हुआ धन है, भोग है, ये है, भगवान का नाम लिखा नहीं है महाराज। जवान लाड़े में सौमण तालो है, अब ताड़े में तोल ले लिए पूरा सौमण ताल लगा है, हम क्या करें, भजन नहीं कर सकते, हमारे लिखा हुआ नहीं भजन लिखा हुआ। अरे भजन लिखा हुआ क्यों, अभी से बोलो लिखा हो जाएगा, दफ्तर रात रात दिन खुला है दफ्तर, लिखा लिखा हो जाएगा, परंतु वो करने की नियति खराब, कारण की पुलिया उल्टी ले ली मूल में, पुरुषार्थ उद्योग से पेट में लगा दिया और आपके वास्ते प्रावे चाहिए महाराज, हमारा सूझता नहीं क्या करे, हम तो जानते नहीं आंधी कोठी हमारा, मैं तो जानती हूँ आंधी कोठी क्या करे, अरे पीछे तो करो सत्संग करो, सुनो महाराज भाग में लिखा नहीं, अरे ये भाग में लिखा नहीं है तो पुरुषार्थ है, करने का है, समझो शास्त्र पढ़ो सफा सिद्ध। अपने शास्त्र नहीं पढ़ते, गीता नहीं पढ़ती, भागवत नहीं पढ़ती, उपनिषद नहीं पढ़ती, महाभारत नहीं पढ़ती, कितनी विलक्षण महाभारत देवियों में आया आपके, तो उसमें कितने लोगों में भी श्रद्धा हुई, हिंदू मुसलमान और ईसाई भी लोग भी देखने लाराज हो जाते, वो नौबजी कितना ही आता था जिसमें बाजार में कमी होगी, बाजार कम चलता वो हजार सब देखने लग जाते, इतनी विलक्षण असर पड़ा कि वो हिंदुओं में कितना विश्वास है, तो शास्त्र तो अपने पास पड़ा है मैंने पढ़े ही नहीं, क्या किया जाए, गंगा जी सामने बहती मैंने पानी पिए नहीं तो सब मरे हुए, अब क्या करे, उसका उपाय क्या करे, अरे गंगा जी कह रही है कितनी विलक्षण महाभारत देवियों में आया आपके, तो उसमें कितने लोगों में श्रद्धा हुई, हिंदू मुसलमान और ईसाई भी लोग भी देखने लाराज हो जाते, वो नौबजी कितना ही आता था जिसमें बाजार में कमी होगी, बाजार कम चलता वो हजार सब देखने लग जाते, इतनी विलक्षण असर पड़ा कि वो हिंदुओं में कितना विश्वास है, तो शास्त्र तो अपने पास पड़ा है मैंने पढ़े ही नहीं, क्या किया जाए, गंगा जी सामने बहती मैंने पानी पिए नहीं तो सब मरे हुए, अब क्या करे, उसका उपाय क्या करे, अरे गंगा जी कह रही है पी लो भाई, गीता है, रामायण है, भागवत है, महाभारत है, उपनिषद है, उनमें कितनी विचित्र विचित्र बातें लिखी है, पढ़ लिखी है, पढ़ते ही नहीं, ब्राह्मण नहीं पढ़ते, अब दूसरे क्या पढ़े, पहले अच्छे विद्वान होते थे, समझदार होते, भीष्म जी महाराज क्षत्रिय थे पर बीमार हुए तो भगवान ने कहा शास्त्र का सूर्य अस्त हो रहा है, शास्त्र का इतना शास्त्र का ज्ञान भीष्म जी महाराज को है, कि ब्राह्मण नहीं थे क्षत्रिय थे, तो शास्त्रों का ज्ञान संपादन करना सबके लिए अनिवार्य है, वो सुनते ही नहीं समझते ही नहीं, तो ये आम की पीड़ा हो गई, तो प्रारब्ध किसके लिए, प्रारब्ध है भोग और संग्रह के लिए, प्रारब्ध प्रधान है और धर्म का अनुष्ठान करना कल्याण करना इसके लिए पुरुषार्थ प्रधान है, तो बराबर नहीं देखा जाता, दोनों का क्षेत्र अलग है, वो उस क्षेत्र में काम करे वो उस क्षेत्र में करे, बराबर तो तब दोनों एक जगह मिल जाए तब बराबर देखा जाता है, तुल्य बल सब होता है, इन तुल्य बल है ही नहीं अपने अपने बलवान है सभी, इस तरह की बात है, चाहिए थोड़ी सी संक्षेप बात कही, बारहवें श्लोक के ऊपर विस्तार से लिखा है, युक्ति संग लिखा है, काफी लिखा है, इसमें आप पढ़ सकते हैं, अब इसमें शंका हो जो करो, इतनी बातें सुने जिसमें आपकी समझ में नहीं आई हो, मेरे कहने में नहीं आई हो, भूल जाता हूँ बहुत बहुत कहने में, तो मैं आ गई हो कुछ गड़बड़ी आ गई हो उल्ट पुलट कह दिया हो तो शंका करो समझे करो, जिससे बहुत खुलासा होगा, जितना संदेह करोगे पूछोगे उतना स्पष्ट होगा विषय, बहुत खुलेगा। आज हमारे पास आया ऐसा मांग आई कि प्रार्थ कहो पुरुषार्थ कहो फिर युक्ति कहो और कर्म कहो, तो कर्म पुराना प्रकर्म में प्रार्थ है, नया काम नाम पुरुषार्थ है, और में युक्तियां है जो शास्त्र की सम्मत हो वो युक्तियां होती है, और प्रावध तकदीर और तदवीर, तदवीर मानो काम करना, तकदीर मानो भाग्य में लिखा हुआ, तो इसमें क्या प्रबल है, अपनी अपनी जगह सब प्रबल है, युक्ति शास्त्र के अनुसार चलो ठीक है, निश्चित नहीं काम नहीं है, उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, मैंने सूत्र में लिखा सका नाम अप्रतिष्ठा ना, अब बोलो मनन करो इस विषय को तब शंका पैदा होगी, शंका करोगे जितना कह रहा उतरोगे समझोगे उतना ही विकास होगा, आंख खुलेगी एकदम आंख खुल जाएगी, वो क्या करना चाहिए क्या नहीं है, प्रार्थ के विषय में और पुरुषार्थ के विषय में सब में जानकारी बढ़ेगी, आंख खुलेगी तो सब काम ठीक होगा, नारायण नारायण नारायण।